देखो बेटा, अगर ये कृष्ण की आवाज हो, ये हमारी इच्छा हो, लेकिन खाएगा तो कौन? कृष्ण ही ने। तो मेन अर्थ है कृष्ण की सेवा करना। अगर हम ये सोचे कि कृष्ण की इच्छा है और हम कृष्ण की सेवा करें, ये भी बेस्ट है। और अगर कभी हमें लगता है कि मेरी इच्छा आज कृष्ण की सेवा करूं, तो ये भी बेस्ट है। लेकिन होने किसकी सेवा चाहिए? कृष्ण की। हमारा केंद्र कौन होना चाहिए? कृष्ण।
हरे कृष्ण बापू जी, अगर कोई रेगुलर मंगल आरती आता हो और अचानक से उसकी मंगल आरती मिस हो जाए बहुत टाइम से, तो क्या उससे कोई अपराध हो गया होगा जो उसकी?
देखो बेटा, अगर मिस हो रही है और उसके पीछे कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, तो भगवान उस मजबूरी और उस परेशानी को समझ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम मंगल आरती में इसलिए नहीं आ सके कि आज हमारे घर में पानी नहीं था, तो ये मानूंगा नहीं, आप बिना नहाए भी आ जाओ, मेरे ठाकुर पति पावन है, मेरे ठाकुर पति पावन है। हाँ, लेकिन आपकी अवस्था बिल्कुल कैसी होनी चाहिए? पवित्र अवस्था होनी चाहिए, ये समझना है। तो आप मानसिक रूप से स्नान करके भी आ सकते हैं। दो तीन इतना तो पानी चुल्लू भर तो होगा ही घर में, ऐसे ऐसे करके आ गए। लेकिन अगर कोई जीनियन प्रॉब्लम है, कोई शरीर में बीमारी आ गई है, कोई घर वाले परेशान है, या बच्चों को पढ़ाना है, एग्जाम के दिन आ गए हैं नजदीक, और ऐसी अवस्था में कभी मंगल आरती मिस हो जाती है, तो भगवान उसको माफ कर सकते हैं। लेकिन जानबूझ के, कायरता के द्वारा, सुस्ती के द्वारा, लापरवाही के द्वारा अगर मंगल आरती में हम ना आए, तो ये अवश्य हमारे किसी बुरे कर्म का फल ही है जो आज हमें भगवान से दूर कर रहा है। इसलिए अगर जानबूझ के, कायरतावश, सुस्तीवश, लापरवाही के कारण, अरे क्या होता है मंगल आरती में, चलता है ना, चार दिन छुट्टी कर लो, जबकि आपको कोई ना मजबूरी है, ना परेशानी है, ना ही कोई ऐसा जरूरी काम है, और आप ऐसे ही पड़े रहते हो, तो ये एक प्रकार का अपराध है। याद रखना, ये मनुष्य जीवन मिलता है तो सदियों में और जाता है तो एक पल में, एक पल में। हम नहीं जानते हैं कि आने वाले कल में हमारे इस शरीर के साथ क्या होगा, या इस शरीर में क्या होने वाला है। इसलिए जितने अच्छे पल में हम अपनी सेवा साधना जो कर सकते हैं वो कर लेना चाहिए ताकि आने वाले कल में पछतावा ना हो। लेकिन आज यदि हम कायरतावश, लापरवाहीवश, सुस्तीवश ये सब गंवा रहे हैं तो अवश्य हम कल बहुत पछताएंगे। इसलिए अगर कोई मंगल आरती जानबूझ के कायरता से, सुस्ती से, लापरवाही से छोड़ रहा है तो ये बहुत उसके लिए हानिकारक है, क्योंकि इस तरह से वो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, कोई शारीरिक पीड़ा है और उसके कारण मंगल आरती नहीं आ पा रहे हैं तो भगवान उस मुसीबत को, प्रॉब्लम को, उस समस्या को समझ सकते हैं। जी
हरे कृष्ण। बापू जी आपके चरणों में प्रणाम। बापू जी आपने उस दिन कहा था कि जो मंगल आरती में जब लोग आते हैं तब आप देखते हैं कि भाई कौन आ रहा है कौन नहीं। आपने कृपा करके हमें ये सुविधा दी है कि अगर हम नहीं आ पा रहे तो घर पे करें, तो घर पे करने से क्या गुरु महाराज की नजरों में हमारी अटेंडेंस हो जाती है?
पहले तो मैं कहूंगा कि कोशिश करके मंदिर आओ, क्योंकि राधा वृंदावन चंद्र हम सबों के आराध्य और प्राणेश्वर है। कृष्ण सोचेंगे कि अगर इनको घर ही पे करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया, मैं इनके घर चला जाता। तो फिर मंदिर का कोई कॉन्सेप्ट रह ही नहीं जाता है, वो आप अपने घर पे जो कुछ करना चाहो कर लो। इसलिए पहली तो कोशिश होनी चाहिए कि आप मंगल आरती में मंदिर आए, राधा वृंदावन चंद्र की सेवा करने। घर पे वो कर सकते हैं जिनको आने में प्रॉब्लम होता है, कोई जीनियन उनको मजबूरी है, या घर वालों की ओर से कोई रिस्ट्रिक्शन है, या कोई और समस्या है, तो वो घर पे कर सकते हैं। लेकिन अगर, या फिर मंदिर आपके घर से बहुत दूर है जहां आप जा नहीं पाते हैं, तो आप घर पे आरती कर सकते हैं। लेकिन मंदिर भी घर के नजदीक है, घर वालों की कोई समस्या भी नहीं है, शारीरिक पीड़ा भी नहीं है, समय भी हमारे अनुकूल है, तो हमें मंदिर में जाके मंगल आरती करनी चाहिए। और फिर घर के ठाकुर की बाद में कर सकते हैं, वो चल सकता है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो फिर आप घर पे ही कीजिए। जी
कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि हम मैं माता हूँ, तुम्हारे पिता हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो उनको खुश करने की जरूरत है हमें?
हाँ, क्यों नहीं, हर बच्चे चाहते हैं कि उनके माँ बाप को हम ज्यादा खुश करें। आप भी चाहती हो कि आप अपनी मम्मी को खुश करें, और हो सकता है इसलिए भी सवाल पूछ रही हो कि मेरी माँ खुश होगी। तो हर एक संतान चाहती है कि उनकी मम्मी पापा उनसे खुश हो, और हर एक चाहते हैं कि उनके माँ बाप उनको खुश देखना चाहते हैं, अपने माँ बाप को। हर अच्छी औलाद अपने माँ बाप को कैसा देखना चाहती, खुश देखना चाहती। और अगर उनको ऐसे लगे कि ऐसे करने से हमारे माँ बाप खुश होंगे तो उन बच्चों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक आया है जिसमें कहा है, माता पिता और गुरुजन की सेवा करना भी एक शारीरिक तपस्या है। तो जो लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं ये भी एक शरीर से क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। अब उसमें माँ बाप भी आ गए और आगे चल के सास ससुर भी आ गए। जो भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करना भी एक शारीरिक तपस्या है, ये भी भगवद गीता में लिखा है।
हरे कृष्णा बापूजी। बापूजी गर्भ गर्भ की मीनिंग क्या है और अल्टर को गर्भ गर्भ क्यों बोलते हैं?
गर्भगृह मतलब जहां भगवान मंदिर की वो जगह या मंदिर का वो हिस्सा जहां पर भगवान को विराजमान किया जाए उसको गर्भगृह कहते हैं, राइट। और वहां जाकर हम भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए जिस जगह पर मंदिर का वो हिस्सा जहां पर भगवान की विग्रह विराजमान हो उस हिस्से को गर्भगृह कहते हैं। जी
हरे कृष्ण बापू जी, हम कहीं भी सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, तो 8-9 घंटे के बजाय हमको वहां से अमाउंट मिलता है, पैसे मिलते हैं, जो सैलरी मिलती है। लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जबकि भगवान ने हमको सब कुछ दिया हुआ है, जी पिंड नख हर चीज दी हुई है, लेकिन बात जब भगवान की सेवा करने वाले हम क्यों कोताही करते हैं?
देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक भगवान के लिए संसार को छोड़ देते हैं और एक संसार के लिए भगवान को छोड़ देते हैं। तो आज कलिकाल में संसार के लिए भगवान को छोड़ने वालों की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर हम ये समझ लें कि सारी रोजी सारा रिज़्क देने वाला भगवान है, तो हम भगवान की पूजा भक्ति सेवा कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर हम समझते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही कमा रहा हूं, मैं ही खिला रहा हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, तो ये सबसे बड़ा अज्ञान है। याद रखना, दुकान खोलना आपका काम है, वहां ग्राहक भेजना भगवान के हाथ में, वो आपके हाथ में नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि एक ग्राहक आता है हमारे पास और हम बहुत अच्छी सेल्समैनी करते हैं और लगता है कि ये सारा सामान खरीद लेगा। इन टाइम पे पता नहीं उसको क्या हो जाता, बोलते ठीक है आप रखिए मैं बाद में आता हूं। हमने तो अपनी सेल्समैनी पूरी करके देख ली, लेकिन जब तक ईश्वर हमारी रोजी सैंक्शन ना करे किसी के ग्राहक की जेब में हाथ नहीं जा सकते। इस चीज को जिसने समझ लिया उसके काम सारे भगवान खुद करते हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है, एक हमारे भारतवर्ष में एक संत गुजरे हैं, सेना नाई हजाम का काम करते थे। याद रखना, मेहनत करते समय कोई काम बड़ा या कोई काम छोटा नहीं होता है, ये हमारी दृष्टि छोटी होती है जिसके कारण करते हैं हम। क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में अज्ञानता कुछ ज्यादा ही है। आप यही चीज बाहर के देशों में देखें, वहां मेहनत करने वाले को कोई शर्म नहीं आती, वहां पढ़े लिखे लोग मेहनत करते, उनके बच्चे जब वैकेशन होती है तो नौकरी पे जाते हैं। इवन अभी आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ओबामा वेकेशन में उसकी बेटी भी नौकरी करने गई एक ये पिज्जा बर्गर की शॉप पे। और हमारे यहां हो तो हमारे बच्चे तो 60,000 का मोबाइल लेके घूम रहे होंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। इतने बड़े, और उस समय वो प्रेसिडेंट थे सीट पर और उनकी बेटी जॉब करने गई। और वहां ऐसा होता है कि आप कितने भी बड़े लोग हैं लेकिन आपके बच्चों को वेकेशन में काम करना है। खैर ये विषय मेरा बदल जाएगा। कहना ये चाह रहा था कि कोई भी छोटे से छोटा भी काम छोटा नहीं होता है, क्योंकि मेहनत करने वाला हमेशा महान होता है। मेहनत करने वाला हमेशा महान होता है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति मेहनत करे तो उसे हमें तुच्छ नजर से नहीं देखना चाहिए। अब सेना नाई जो काम से लोगों की क्या करते थे, हजामत करते थे, लेकिन भगवान के ऊंच कोटि के भक्त, ऊंच कोटि के भक्त सदैव गोविंद 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 करते रहना और साथ साथ में अपनी मेहनत और मजदूरी भी करते रहना। राजा को उसका काम बहुत पसंद आया और राजा ने कहा कि आपका काम है रोज मेरी शेव करना। राजा ने कहा रोज मेरी सेवा भी करेंगे। राजा के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि राजा को कोढ़ था, इसलिए वो शेव उन्हें काटती थी, ऐसे बहुत तकलीफ करती थी, इसलिए रोज करनी थी। और सेना नाई रोज जाकर राजा की क्या करते, शेव करते थे, ये उनका नौकरी थी। राजा ने स्ट्रिक्टली कहा था कि किसी भी दिन छुट्टी नहीं करने की, आपको आना ही है। इसलिए सेना रोज जाते और रोज जाकर राजा की शेव करते हैं, हजामत करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, कुछ भी आप कह लो। एक दिन जैसे ही भक्त सेना ने अपना सामान उठाया, कुछ साधु आ गए। जो श्रद्धावान लोग होते हैं वो साधुओं को देख के बड़े खुश होते हैं कि अरे भगवान के प्यारे आए। इसलिए सेना भक्त सेना ने सोचा दो मिनट बैठ जाता हूं, संत घर पे आए, सामान रखा, बैठ गए। अब संतों ने कीर्तन स्टार्ट कर दिया, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण। खोते 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 सेना को पता ही नहीं चला कि मुझे आज राजा के यहां जामत। समझाना यह चाहता हूं कि आप भगवान पे रखिए और मेहनत कीजिए, कृष्ण फर्स्ट। क्या कृष्ण फर्स्ट, सारे काम वही करेगा, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई थे, उसके यहां कमी कौन सी है। साहेब के दरबार में कमी कछु की नहीं, वहां कोई कमी है ही नहीं, वो तो लक्ष्मीपति है। ये हम हैं, हमारी नियत खराब है जो भूखे मरते हैं, क्योंकि जिनादि नियत बद्ध उनानु रोटी अद्ध। अगर हम भगवान पे भरोसा रखते हैं और अपनी मेहनत से काम करते हैं। और एक व्यक्ति मुझे कह रहा था, मैंने उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी मुझे बात। उसने कहा कि अगर आप लोग की पगार 500 रुपए है, ठीक है, लेकिन आप 5000 की मेहनत करो, भले आपको 5000 ना भी मिले, लेकिन मेहनत उतनी करो। भगवान देख रहा है, ये मालिक आपको 500 देगा, बाकी कितने रह गए, 4500 वो मालिक देगा जब समय आएगा। तो किसी की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है, लेकिन हम काम चोर लोग हैं, काम चोर लोग। इसलिए पहले कृष्ण, कौन पहले कृष्ण। मुझे बहुत खुशी होती है, हमारे परिवार में ऐसे कई लोग हैं जो मंगल आरती आते हैं और मंगल आरती से सीधे बॉम्बे काम पे जाते हैं। मंगल आरती आते हैं, उसके बाद घर जाते हैं और सीधे दुकान पे चले जाते हैं। ऐसे कई लोग आपको बताऊं, करने वाले बहुत कुछ कर सकते हैं और न करने वाले को हजारों बहाने होते हैं, इसलिए वो दुखी है। फिर गधे की तरह काम करेंगे लेकिन उनको सेवा साधना नहीं हो पाएगी, इसलिए वो दुखी है। कृष्ण पहले, कृष्ण पहले। तो कृष्ण कहेंगे आप भी पहले, ये यथा माम प्रोविदेंते ताम सतायो भजामि हम। आप कहेंगे भगवान बाद में, भगवान कहेगा तू भी बाद में, और बाद कभी आती नहीं। इसलिए सेना भक्त जो थे वो इतने भजन में खो गए, इतने खो गए कि 11 में 5 हो गए पता भी नहीं चला। हो गया समय, जब कीर्तन पूरा हुआ तब सेना की नजर गई, हो बाप रे, आज तो राजा मुझे छोड़ने वाला नहीं है क्योंकि दोपहर हो गई, आज राजा मुझे नहीं छोड़ेगा, आज तो मेरी मृत्यु पक्की है क्योंकि 10-15 मिनट भी नहीं होती, ये तो पूरा आधा दिन हो गया और राजा पागल हो गया होगा। ये सच्ची घटना है। सेना जल्दी 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 उठा, भागा, अपना सामान लेके तेज तेज कदमों से दौड़ता हुआ गया राजा के दरबार में। वहां तो भीड़ लगी पड़ी थी। सेना समझ गया आज मेरी मौत है। सेना जैसे ही दरबार में घुसा, राजा ने देखा, राजा वहां से भागा। सेना समझ गया कि आज ये अभी भागा है ना, तो बस कुछ समय मुझे छोड़ेगा नहीं, और वो हरी हरी गोविंद 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 गोविंद। ऐसे करने लगे। ऐसे में राजा दौड़ता हुआ है और भक्त सेना के पांव में गिर गया। इसको कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हुआ। एक तो मैं लेट आया, होना तो ये चाहिए था कि मेरी वो गर्दन उड़ा देता, और गर्दन उड़ाने की बजाय ये मेरे पांव में पड़ गया, है ही क्या बात। भक्त सेना ने राजा को उठाया, महाराज आप, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज बहुत लेट से आया हूं, बहुत देर हो गई है महाराज। राजा ने कहा ऐसे कैसे, आज तो आपने चमत्कार कर दिया। बोला क्या चमत्कार महाराज। बोला आज आप अपने टाइम पे आए हो, आज आप अपने समय पे आए हो, और पता नहीं आज तुमने कौन सा क्रीम लगाया था, हो सकता है शेविंग क्रीम उस जमाने में भी हो कोई, आपने कौन सा हाथ लगाया कि आपके हाथ लगते ही आज मेरा कोढ़ उतर गया और मेरा शरीर देखो कंचन जैसा हो गया। तब सेना समझ गया कि मैं तो आया नहीं था, फिर मेरा श्याम सुंदर आया होगा, मैं तो नहीं आया था, वो आने वाला कोई और था, मैं तो रोज ही इनकी शेव करता था, मेरे हाथ लगने से तो ये मेरा गोविंद आया था, यही सब कुछ करता है, नीच को ऊंच करे मेरे गोविंद, काहे को न डरे। ये हमारा विश्वास होना चाहिए, नीच को ऊंच करे मेरे गोविंद, काहे को न डरे। भक्त सेना धन्य है आप, मुंह मांगा वरदान दूंगा, बोलो क्या चाहिए, मेरी काया कंचन की हो गई। भक्त सेना ने कहा महाराज वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ देना ही चाहिए तो दो चीजें मुझे चाहिए। राजा ने कहा 100 चीजें मांगो, आपकी वजह से आज मेरा शरीर कंचन का हो गया। सेना ने कहा पहली चीज तो चाहिए कि एक मेरे ठाकुर का मंदिर बनवा दो, जहां उनकी बहुत अच्छी तरह से पूजा हो, और दूसरा मंदिर के पास एक धर्मशाला बनवा लो जहां मेरे संत साधु आकर निवास करें, क्योंकि आज वो मेरे घर आए थे और उन्हीं के कारण यह सब हुआ है। इसलिए जब हमारे जीवन में भगवान पहले आ जाता है, वो दिवाली के दिन थे और उन जमानों में राशन के किराने के सुपर स्टोर नहीं होते थे, एक दुकान थी गांव में और बड़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़ थी, इतनी भीड़ जिसकी कोई हद नहीं। हर एक आदमी एक दूसरे को धक्का मार के आगे जाने के लिए कह रहा है। ऐसे में एक व्यक्ति आया, जैसा ही आगे जाए उसको पीछे कर दे, ए पीछे चलो, जैसा ही जाए उसको धक्का मार के पीछे कर दे, उसको आगे जाने ही ना दे। तब देर हो गई, लोग चिल्लाने लगे कि अभी तक दुकान क्यों नहीं खोली। वो जो पीछे धक्के खा रहा था बोला, मुझे जाने दोगे तो दुकान खोलूंगा ना, मैं ही दुकान का मालिक हूं। बस यही हालत है, जो संसार का मालिक है उसको आगे जाने दो, आपके भाग्य खुलेंगे। हमारे भाग्य क्यों बंद है कि हमने उस मालिक को पीछे धकेल दिया है, उस परमात्मा को हमने पीछे धकेल दिया है और खुद को हमने आगे रखा है। और हम समझते हैं कि मैं इनको खिलाता हूं। कभी कभी घर वालों को हम रोब झाड़ते, मैं मर गया ना सब भूखे मरोगे, मैंने तुम लोगों के लिए किया है, मैंने तुम लोगों के लिए किया है, मैंने तुम लोगों के लिए ये किया है, मैं करके पूरी बकरी बन जाता है। मैं नहीं हूं तो तुम लोग भूखे मरोगे, मैं नहीं हूं तो तुम लोग ऐसे हो जाओगे वैसे। अरे भाई तू नहीं था तब भी तो दुनिया चल रही थी ना, और तुम नहीं होगे तब भी दुनिया चलेगी, क्योंकि चलाने वाला तुम नहीं, वो चिल्लाने वाला है और तुम चिल्लाने वाले हो। सावधान है कि नहीं भाई, वो चलाने वाला है और हम चिल्लाने वाले हैं, बस चिल्लाते रहते हैं चील की तरह। इसलिए कृष्ण फर्स्ट, पहले भगवान, जीरो के आगे एक लग जाए तो दस हो जाता है, और एक जीरो के पीछे चले जाए तो जीरो जीरो ही रह जाता है। बस जीरो के आगे एक होना चाहिए, है? माम एकम शरणम भजे, वो एक होना चाहिए। उस एक को अपने जीवन में ले आओ, आपका सारा जीवन धन्य हो जाएगा। मुसीबत यह है कि हमने उस एक को पीछे रखा है और जीरो को आगे रखा। हम तो जीरो हैं, हम तो जीरो हैं, हमारी औकात क्या? अभी एक ठोकर लगेगी गिर जाएंगे, अभी बीपी हाई हो जाए दिमाग की नस फटी गए, हार्ट अटैक हो गया गए, एक्सीडेंट हुआ गए, ऊपर से कहीं से गिरे गए, हमारी औकात ही क्या है? अभी भगवान ना करे किसी को बीमारी हो जाए, दो महीने में पहचाने भी नहीं जाएंगे, शकल रूप रंग सब बिगड़ जाएंगे। क्योंकि पहली बात तो है कि बीमारी में आदमी का असली चेहरा दिखता, मेकअप होता नहीं, लोग वैसे ही नहीं पहचानेंगे तो बीमारी में कहां से पहचाने। शेव बढ़ गई है, बाल सफेद हो गए क्योंकि काले करने का मन ही नहीं होता। ये सही मैंने लोगों को देखा है इसलिए कहता हूं, ये सच्ची बात है, इसलिए लोग पहचानेंगे नहीं। वो गाना नहीं सुना, नाम कैसे, नाम गुम जाएगा चेहरा भी बदल जाएगा। इसलिए भाई मैं आप लोगों को समझाऊं, अपनी रोजी रिस्क देने वाले को फर्स्ट, पहला प्रायोरिटी टाइम उसको पहले देना चाहिए। थोड़ा ही दो लेकिन दो जरूर, क्योंकि उसी की दया से इंसान चमकता। जय प्रसाद आभूषण पैसे मंति सिमरत क्यों आलस कीजिए। पहले वो फर्स्ट कृष्ण, जब हमारे जीवन में पहले कृष्ण है तो फिर योगक्षेम वहां में हम, ये भगवान ने भगवत गीता में वादा किया है। नित्य भजो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र विहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय।